This is 7-day session and Rajari Garden Park by H.G.S. Kesham Rari Bhuji, recorded on 15th of December 2015. On why good thing, why bad things happen to good people. Hare Krishna.
तो आप सबका स्वागत है आज के इस थर्ड सेशन सॉरी फिफ्थ सेशन में, और इसमें हमारी कोशिश रहेगी, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, और लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम इसको फिर से आधे घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करें। हम लोगों ने बताया था शुरू में भगवद गीता के पांच जो टॉपिक हैं, जिसमें ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म, ये पांच मुख्य टॉपिक है जो भगवद गीता में डिस्कस किए गए हैं। उसमें से हमने अभी तक ईश्वर पे डिस्कस कर लिया और जीव मतलब आत्मा पे डिस्कस कर लिया, और अभी तीन टॉपिक रह गए जैसे वो आज हम क्लियर करेंगे, उसको कोशिश करेंगे। एक है प्रकृति, दूसरा है काल और फिर कर्म। तो हमने आज इस टॉपिक का नाम देखा है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और जनरली सब लोगों का भाव रहता है कि इसका आंसर पता चले, और हम देखते हैं कि जब आंसर नहीं मिलते हैं तो ज़्यादातर लोग फिर नास्तिक भी हो जाते हैं कि ठीक है हम तो अच्छा कर रहे हैं, और फिर कई लोग अपने हिसाब से फिर उसका स्टेप उठाते हैं, कुछ गलत भी हो जाता है। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें थोड़े से कई और चीज़ों पे भी विचार करना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में हर चीज़ के कारण, जब भगवान बताया कि भगवान है सर्व कारण कारणम, एक तो ये है, और दूसरे हमारी स्थिति क्या है, ममे वांश जीवलोके, हम भगवान के अंश हैं और इस संसार में हम लोगों को भगवान से विद्रोह कर या उनसे अलग होकर भोग की इच्छा के कारण अपनी जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस का हमने मिसयूज किया, उसके कारण हमें संसार में भेजा गया। इस संसार में भेजा गया तो हम लोगों को इस जेल रूपी संसार में भेजा गया, तो यूनिफॉर्म भी दिया गया। जैसे जेल में जाता है कोई तो कैदी नंबर 325 ना होता है ना, एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, उस पर नंबर भी लिखा होता है। तो हमें भी यूनिफॉर्म दिया गया और नंबर भी दिया गया। यूनिफॉर्म था सटल एंड ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ, और ग्रॉस बॉडी पांच तत्वों का बना हुआ। और नंबर भी दिया गया, नाम, जो हमको कोई ना कोई घर में नाम मिला है ना जी। तो इस संसार रूपी जेल में हम सब क्या हैं, कैदी हैं, क्योंकि हमने कहा के रूल्स तोड़े हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स तोड़े। तो पहली सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई हमसे कि हमने नियम तोड़ा है। अब जब कोई नियम तोड़ता है और जेल में आता है तो उसके साथ कोई अच्छा होगा, तो फिर हमें क्यों लगता है कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अब कोई कैदी अंदर बोले मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो कैदी को क्या समझाओगे आप? फिर वो कहेगा नहीं, कुछ लोगों के साथ तो जेल के अंदर भी अच्छा हो रहा है, कोई फर्स्ट क्लास जेल में, कोई सेकंड क्लास जेल में, मैं थर्ड क्लास जेल में हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों है। वो बोलेंगे भाई तुम्हारा जो तुमने पाप किया था उसकी धारा कम लगी हुई है या ज्यादा लगी हुई है, तो उसके हिसाब से तुम्हें मिली है संगीन जुर्म की संगीन सजा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार संसार में आने के बाद जीवात्मा जब अपने आप को आइडेंटिफाई करता है शरीर से कि ये शरीर ही मैं हूं, तो फिर वो अज्ञानता के कारण कई तरह के कर्म करता है ना। और फिर होता क्या है कि हम लोग देखते हैं इस भगवान के द्वारा बनाई हुई इस क्रिएशन में, कुछ लोग धनी परिवार में जन्म लेते हैं, बॉन्ड विद सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून और डायमंड स्पून। डायमंड तो डालेंगे। कुछ लोग बड़े ही गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं, कुछ लोगों को सुंदरता बड़ी अच्छी मिलती है और कुछ लोग बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते। किसी को रंग बड़ा साफ मिलता है और कईयों का रंग साफ नहीं होता। कुछ लोग हेल्दी पैदा होते हैं, कुछ लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं। कई बड़े गुणों के साथ पैदा होते हैं और कई लोग बहुत अवगुणों के साथ पैदा होते हैं। जैसे बताते हैं, जब दुर्योधन पैदा हुआ तो सारे के सारे जो नक्षत्र से सब उल्टे हो गए, गधे रोने लगे, सियार चिल्लाने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। क्या हो गया भाई? दुर्योधन पैदा हुआ। अच्छा, और जब कोई अच्छी आत्मा पैदा होती है तो सारे नक्षत्र फेवरेबल हो जाते हैं। हाँ, चंद्रमा पूर्ण होता है, ऋतुएं बड़ी अच्छी होती हैं, शुभ लक्षण होते हैं हर जगह। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह पैदा हुए, कुछ लोग हेल्दी पैदा हुए, तो कुछ डिजीज पैदा हुए। कईयों को ज्यादा बीमारियां लग रही हैं, कईयों को बिल्कुल बीमारी नहीं लग रही। कई थोड़ा सा पैसा लगाते हैं ज्यादा कमा लेते हैं, कुछ ज्यादा पैसा लगाते हैं तो थोड़ा भी नहीं कमाते। कई बार देखते हैं कि एक ही डॉक्टर है, मिस्टर त्रेहन, दो पेशेंट आए, दोनों के हार्ट की प्रॉब्लम है, दोनों को ऑपरेट किया, एक जिंदा बच गया और चला गया। ये क्या कारण है जी? डॉक्टर भी तो वही था, उसने बोला था बचा लूंगा, अभी कहां गया भक्ति? कहीं देखते हैं कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत धनी देश हैं, वहां लोग पैदा हो रहे हैं सिक्योरिटी के साथ, और कुछ ऐसे देश हैं जहां पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? तो कई बार देखकर ये सब लगता है कि क्या वास्तव में इस सृष्टि का कोई कंट्रोलर है भी कि नहीं? आपने तो बताया उस दिन कोई कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब अप्स एंड डाउन देखकर, ये सब असमानताएं देखकर कई बार ये लगता है कि वास्तव में भगवान है ही नहीं। और खासकर अपने साथ होता है कई बार कि हमें लगता है मैंने सब कुछ ठीक किया, मैंने उसके साथ ठीक किया, मैंने उसके साथ ठीक बोला, मैं सही पेश आया, बिल्कुल सही सब कुछ किया, फिर भी मेरे साथ गलत हुआ, फिर भी मुझे धोखा दिया, फिर भी आखिरी में बच्चों ने बोल दिया तुमने हमारे लिए किया ही किया। तो लगता है फिर अच्छे लोगों के साथ लोग बुरा क्यों करते? तो हमने अच्छे होने की डिग्री किसको दे दी? अपने आप को, कि हम अच्छे ही हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर हम कहते हैं फिर इसका मतलब हम तो अच्छा कर रहे थे। कई बार अगर माने हम, चलो शास्त्रों की बात भी माने, लोगों की बात भी मान लें कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, तो हम तो अच्छा कर रहे थे, अच्छा क्यों नहीं मिला? तो एक छोटे से एग्जांपल समझेंगे। एक बार एक किसान के घर में बातचीत हो रही थी हस्बैंड वाइफ की कि इस बार खेती बहुत अच्छी हुई है, आज मैं फसल काट के आया हूं, ऐसा गेहूं ऐसे चावल तो आज तक निकले ही नहीं। तो उनके घर में ना बड़ा सा एक बैरिंग होता है, ड्रम होता है, तो उन्हें सारा बच्चे के सामने डाल दिया उसके अंदर। और जब शाम को माँ ने जब अनाज निकाला नीचे से, तो अनाज निकाला बड़ा गंदा था, बेकार रोटी बड़ी बेकार बनी। बच्चे ने कहा माँ आज शाम को मैंने सुना और मैंने देखा भी, हमने अच्छा किया, अच्छी खेती अच्छी फसल हुई, हमने ऊपर से डाला, निकला गंदा क्यों, रोटी गंदी क्यों बनी? तो माने का बेटा ये पिछले साल की फसल है जो पहले डाली हुई थी, जो हमने इस साल डाली है वो तो इसके ऊपर आई ना, तो बाद में आएगी। लास्ट कम लास्ट आउट, लीफो फीफो होता था ना। तो इस प्रकार बच्चा समझ गया। उसी तरह शास्त्र बताते हैं कि जो असमानताएं दिखती भी हैं, ये इसका कुछ ना कोई कारण होता है। हमने बताया ना कि हम लोग कंट्रोलर नहीं है, हम छोटे मोटे कंट्रोलर हैं। माइक कंट्रोल कर लिया, ड्राइविंग स्टीयरिंग कंट्रोल कर लिया, बट सुप्रीम कंट्रोलर क्या कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो प्रकृति है, प्रकृति वास्तव में इसको तीन गुण बताए गए हैं, प्रकृति के तीन फोर्सेस जो सारी नेचर को चलाती है, वो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भगवान ने कहा ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचर। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, ये फोर्सेस मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो जब ये प्रकृति काम करती है, तो जो जीवात्माएं अपने हर प्रकार के कर्मों को करने के बाद शरीर का त्याग करता है, तो शरीर तो जल जाता है, पांच तत्वों का शरीर जल गया। फिर कई बार बोलते लोग डराने के लिए, जो नरकों में भेजते हैं, स्वर्ग जाते हैं कि सब बेकार है, नरक स्वर्ग सब यही है, ऐसा बोलते हैं लोग। हमारे बोलने से आएगा यहाँ पर, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है दुख यहां मिल गए, सुख यहां मिल गए, तो यही है स्वर्ग नरक। नहीं, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का कुछ परसेंटेज, एक बार सुना था शायद 25% तो नरकों में मिलता है, और बाकी यहां पर देह के रूप में कोई ना कोई शरीर देकर, चाहे पशुओं का मिले चाहे ह्यूमन बीइंग मिले। तो जब शरीर मिलता है यहां पर, तो हम लोग तीन फोर्सेस के द्वारा, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के द्वारा, हमारे किए गए कर्मों के अच्छे फल और बुरे फल हमको समय के साथ, काल दूसरा, काल के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। ये तीनों गुण हमें ऑटोमेटिकली फोर्सफुली उन जगहों पर ले जाते हैं वो काम करवाने के लिए। ये हमारे अंदर ही होते हैं, कि बाहर से नहीं आते हवा की तरह, कुछ फोर्स नहीं। ये तीनों गुण हमारे अंदर ही हैं, तमोगुण भी, रजोगुण भी, सत्वगुण भी। मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस। और जीवात्मा इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर काम करता है, ये हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अचानक गुस्सा क्यों आ गया, काम वासना क्यों जागृत हो गई, क्यों आज अच्छा अच्छा लग रहा है। तो भगवत गीता जिसने पढ़ी है उसको मालूम पड़ेगा कि अरे ये तीन गुण हमसे सारे काम करवाते हैं। अगर हम तमोगुण में हैं, तो उसकी कुछ चीजें लिखी हैं। तमोगुण का जो खाना है, भोजन, वो बताते हैं खट्टा, एग्स, अंडे, मांस, सड़ा हुआ, बासी, बदबूदार या इंटॉक्सिकेशंस। अभी जो मदिरा इत्यादि बनती है, फलों को सुखाकर बदबूदार बनाने के बाद, है ना, तो बिकती पीते, तो ये तामसिक पेय या खाद्य पदार्थ है। इस तरह के भोजन को करने से व्यक्ति की वृत्तियां, उसकी मानसिकता तामसिक हो जाती है। वो अगर वर्शिप भी करता है तो किसके करेगा, भूतों की और प्रेतात्माओं की। सुना है आपने कश्यप करते हुए, होते हैं ऐसे लोग, भगवत गीता में ऐसे लिखे। और वो काम कैसे करते हैं, चोरी, खून करना लोगों का, या चीटिंग करना, रॉबरी कर देना, ट्रैकिंग, स्ट्रगलिंग, स्मगलिंग, ऐसे काम करते हैं। इसमें उनको आनंद आता है। हैं देश में ऐसे लोग, विदेश में ऐसे हैं, सुना है आप लोगों ने, छोटा या बड़ा राजन, ये सब सुना है, दाऊद इत्यादि, है ना, है कि नहीं। ये तामसिक वृत्ति के कर्म है। और ये लोग चैरिटी भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, बस दे दो कहीं भी, मालूम नहीं किसको दिए, कहाँ दिया है, ये लो सर हमने तो दे दिया, सर इसको आईएएस के लिए दे दो, हाँ दे दो, जिससे किसी का नुकसान हो, ज्यादातर ऐसा धन उनका उस जगह पे लगता है। ज्ञान होता है इनके अंदर, बस किस तरह का, कि कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे डिफेंड करूं, पशु वक्त, ऐसा ज्ञान भी होता है। और डिटर्मिनेशन बड़ा लो होता है इनका, ये इनको बोले ना आप ये करिए और रोज करिए, वो नहीं करेंगे, उल्टे सीधे काम सारे रोज करेंगे तपस्या करके। और एक्शन इनका है, बड़े रिस्पॉन्सिबल होंगे, वॉयलेंट होंगे, डिस्ट्रेसिंग होंगे, मतलब दूसरों को दुख देने वाले होंगे। और इनका जो आनंद है वो केवल सोने में और लोगों को बेवकूफ बनाने में या आलसी रहने में। जैसे एक बार आलसी का बताया कि आलसी, तमोगुण का मतलब ही आलस, तो पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा, बहुत गांव का मालूम तो ये आलसी है। तो एक व्यक्ति सामने से ज्यादा कहता है, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कहते तेरे से तो बात भी नहीं करूंगा, आलस का प्रभाव पड़ जाएगा। कहते बात तो सुनो, कहते क्या है? भूख हूँ, भूखा हूँ। कहते भूखा हूँ तो पेड़ बेर के पेड़ के नीचे बैठा। तो कहते अच्छा, तो कहते ये डाल जाओ मेरे मुंह में, डाल जाओ। कहते तोड़ के भी नहीं खा सकता। फिर शाम को वापस आता, फिर आवाज मार के बुलाता है, कहता अब क्या है? कहता गुटली निकाल दो, ऐसे बोलने के लिए। बट कहने मतलब तामसिक लोग आलसी होते हैं, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो देख लेंगे, क्या दिक्कत है। और इस प्रकार उनका समय निकलता जा। कपड़े कैसे पहनते हैं लोग? बहुत डार्क होते हैं, नो सेंस, डर्टी, और ऐसे डार्क कलर जो कि जैसे वैसे बताते हैं, काला रंग भी क्या होता है? तामतम होगा। तो इस तरह के वो होते हैं प्रभाव। और म्यूजिक किस तरह का सुनते हैं? म्यूजिक भी सुनते हैं लोग, स्केरिंग मतलब डराने वाला, वॉयलेंट, और मतलब कुछ भी कह सकते हैं उसको। और इनका बड़ा ऑरा भी होता है, इनका डार्क ब्लैकिश ऑरा भी होता है। तो इस प्रकार की इनकी वृत्तियां रहती हैं, खाना, भोजन, कपड़े, ये हमने बताया कि किस तरह तामसिक लोग। और ये पूरा का पूरी चीज उनसे कुछ अच्छा काम करने नहीं देती। जो राजसिक लोग होते हैं, इनके बारे में बताया जाता है, ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं, फूड हैबिट्स होती हैं, गरम गरम खाना, खूब तीखे, मिर्च वाले, खट्टे, मसालेदार, मतलब मजा आ जाए, बस कान आंख से धुआं निकलना चाहिए। जंक फूड। तो और वर्शिप किसकी करते हैं? पॉलिटिशियंस की, रॉक स्टार्स की, सिनेमा स्टार्स की, क्रिकेट स्टार की, उनके मंदिर बना लेंगे लोग, इसको बोलते हैं आइडल वर्शिप। काम क्या करते हैं? वाइन शॉप खोलेंगे, मीट शॉप खोलेंगे, इस तरह के कामों में, जिससे कि कुछ ना कुछ वो हो। और ऐसे उग्र काम करेंगे, बिजनेस जिसमें खूब मेहनत लगती हो, खूब संघर्ष होता हो। चैरिटी करते हैं फॉर फेम, नाम हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए, और रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। मुझे क्या मिलेगा? मैंने ये दिया, मुझे क्या ऑफिस मिलेगा? तो ये चैरिटी, ये दान का इनका नॉलेज होता है, इनका स्पेकुलेटिव दिमाग ज्यादा चलाते हैं। ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, अरे शास्त्र वो भी तो किसी ने लिखे ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, एक्सपीरियंस है मुझे, तो अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। और वर्क एथिक्स क्या है? वर्क इज वर्शिप। मैंने जो काम किया, काम ही क्या है? पूजा है। और काम में लगन, लगन पूरे लगे रहेंगे, सुबह से रात तक, दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना, और बस लगे हुए, अपने लिए समय नहीं है, और समय है भी तो फिर उन दूसरी चीजों को करने के लिए। डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ कर दिखाएंगे, लेट्स मेक डेंट ऑन दिस अर्थ, दिस प्लेनेट, दिस यूनिवर्स, कि इतना मेहनत करो, इतना काम करो, कुछ कर दिखाओ, बस दुनिया कहे कि कुछ कर गया ये व्यक्ति। और एक्शन, आई डोंट केयर, ट्रिगर माई पैशन, है ना, जस्ट डू इट, कर दिखाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, किसने देखा है कल, है ना, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, भगवान भी पूछेगा तूने क्या किया नीचे जाके, तेरे को तो भोगने के लिए भेजा था, है ना, अगर मैं मीट नहीं खाऊंगा बकरे बढ़ जाएंगे, मैं सांप नहीं खाऊंगा तो सांप बढ़ जाएंगे, मैं बिच्छू नहीं खाऊंगा, ये तो नहीं खाते, है ना, तो अगर मैं नहीं खाऊं, अरे यू आर नॉट द कंट्रोलर बाबा, आप बहुत सारी चीजें नहीं खाते, उसका भी सिस्टम भगवान देख रहे हैं, नेचर देख रही है, है ना। डायनासोर नाम के लोग होते थे यहाँ पर, डायनासोर भी हुए हैं बड़े बड़े, अब कहाँ है वो, चले गए। तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे, कौन कंट्रोल कर रहा है? सुप्रीम कंट्रोल। तो ये केवल टंग के सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट ने बोला दाउ शुड नॉट किल, तू वध नहीं करेगा किसी का, उन्होंने ना बाइबल में चेंज कर दिया, उसमें लिखा मर्डर, उसकी जगह ना किल की शब्द की जगह मर्डर कर दिया, और बोला हम मर्डर नहीं करते किसी का, हम बोलते हैं कि एक दूसरे को मारो मत, क्राइस्ट ने बोला। प्रभुपाद जी कहते थे भाई ये मर्डर शब्द कहां से आ गया, ये तो किल शब्द था, और किल तो हर एक लिविंग एंटिटी के लिए होता है। कहते हैं यही तुम्हारी गलती है, तुमने धर्म का त्याग किया, तुमने खाली उसको मर्डर कर दिया शब्द, क्राइस्ट की इंग्लिश इतनी खराब नहीं थी कि जहां मर्डर लगाना था किल लगा दिया, किल मतलब टू किल ईच एंड एवरी वन, सभी लिविंग, और तुमने बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस खोल दिए जस्ट टू सेटिस्फाई दिस टंग, और टंग को सेटिस्फाई करने सबको खाना शुरू कर दिया तुमने, इसलिए तुम्हारे यहां से धर्म खत्म हो गया, ताले लगने लगे चर्चेस में। अब तुम पैसा भेज रहे हो इधर उधर ताकि कन्वर्ट हो लोग, हमारा धर्म बचा रहे, लेकिन पाप सारे कर लो और फिर साथ में जाने जाके क्या कर लो, माफी मांग लो, बार बार नहीं चलेगा ऐसा काम। इस तरह ये लोग, इनका खुशी का तरीका होता बस खाओ पियो ऐश करो, कपड़े ये पहनते हैं फ्लैशी रिवीलिंग, बॉडी रिवील करें, जो फिगर्स रिवील करें, दूसरों को एजिटेट करें, अपीलिंग रिवीलिंग, और ये किसको, अपोजिट सेक्स को रिवील वो करने के लिए, सो दैट कि लोग मुझे देखें। जो मुझे देखेंगे तो मुझे चाहेंगे भी, मुझे चाहेंगे भी तो फिर हम उल्टे से संबंध भी बनाएंगे। तो और इनका जो म्यूजिक है बहुत लाउड, बहुत एनर्जेटिक, हैवी इंस्ट्रूमेंटल टाइप का म्यूजिक है, मतलब पैशनेट, जैसे डिस्कोज में बजता है, कौन फट जाए बस। और आ रेडिश, इस तरह का रहता है इनका। तो ये है रजोगुनी लोग, और एक है सतोगुनी लोग, उनके बारे में सुन ले थोड़ा सा। इनका फूड हैबिट्स हैं स्वीट, फ्रेश, जूसी सैलेड, मिल्क प्रोडक्ट्स, इनको खाने से ऑटोमेटिकली सतोगुण की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, पीसफुल रहता है व्यक्ति। वर्शिप करते हैं देवी देवताओं की, या भगवान की भी कर लेंगे लेकिन मिक्स कंफ्यूज रहकर, और या फिर इम्पर्सनल ब्रह्म निराकार की। वर्क है इनका टीचिंग एंड डॉक्टर और इस तरह की चीजें करते हैं। चैरिटी ये करते हैं किस रूप में, परफॉर्म्ड एज अ ड्यूटी, कि मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज है समाज के लिए देना, गरीब को खिलाना मेरा फर्ज है। नॉलेज, रूल्स रेगुलेशन पालन करने की कोशिश करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, रेडलेट्स वगैरह फॉलो करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और इनका काम का उद्देश्य होता है कि लोग मुझे देखें, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, बट शांतिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जो है कलर इनके व्हाइट सैफ्रन इस तरह के पसंद आते हैं, लाइट कलर्स। म्यूजिक इनको शांत स्वभाव वाला, कानों को अच्छा सूदिंग म्यूजिक अच्छा लगता है, और इनका सुख है प्रकृति में, नेचर में, है ना, पेंटिंग्स में, कविताओं में, तो इस तरह की चीजों में आनंद लेते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं, इन तीनों प्रकार की जो वृत्तियां हैं, ये हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। एक दिन में सबके अंदर तमोगुण भी है, रजोगुण भी, सतोगुण भी। कई बार तमोगुण जी किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता तो उठता ही नहीं है, नहीं आज मैं नहीं उठूंगा, आज छोड़ दो बस। तो समझ लो हमारे अंदर तमोगुण बढ़ रहा है, तमोगुण की वजह से हम लोग सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जाती है, लेजी हो जाते हैं और काम टालने लगते हैं। रजोगुण में हम करना चाहते हैं, चलो जी चाय पिला दो, चाय नहीं पी तो फिर क्या फायदा, चाय पीने से एनर्जी आ जाती है, स्टिमुलेट होता है माइंड और फिर कुछ करने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है तो फिर हम क्या करते हैं, पैशनेट काम करते हैं, कुछ कर दिखाएं, यहाँ क्या बैठे हैं 4 घंटे, वहां लगाता तो 4 लाख और लिया था, है ना, तो और बढ़ने की कोशिश रहती है। और सतोगुण में व्यक्ति पीसफुल रहता है, चलो जी सुबह सुबह का टाइम है, हम भक्ति कर ले, मजा कर ले, है ना, थोड़ा सा कीर्तन कर ले। और दिन में भी, एक दिन के अंदर भी तीनों गुणों का प्रभाव होता है, सुबह का समय सतोगुण का, इसलिए आप सब बैठे हैं सुन रहे हैं, दोपहर 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद रजोगुण शुरू हो जाता है, प्रभाव, भागो दौड़ो, फोन कॉल, पैसा, ये वो, फ्यूचर प्लानिंग, है ना। संध्या समय सारे बुरे काम शुरू हो जाते हैं, तमोगुण। तो इस प्रकार ये तीनों गुणों का प्रभाव दिन में भी रहता है। फिर हमने उस दिन शध्यान ही बताया, कहीं और बताया था, भगवत गीता कहती है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में शरीर त्यागते हैं, इस वृत्ति के होते हैं जिनके अंदर ज्यादा सतोगुण होता है, अच्छे काम करने वाले, पुण्य काम करने वाले, तो जब ये शरीर त्यागते हैं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, शरीर त्यागने के बाद ही ऊंचे लोकों में, पृथ्वी के ऊपर के लोकों में जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि में, जितने पुण्य करें तब तक वहां रहेंगे। मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, जो राजसिक वृत्ति के लोग हैं वो वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग बनकर, पशु बनकर आ जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के। अधोगच्छन्ति तामसः, जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, या तो पशु होने में लंबे समय तक रहते हैं या नरकों में जाते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा इनको वापस आना पड़ता है इस साइकिल को चलाने के लिए, फिर मनुष्य बनना पड़ता है, ऊपर से भी नीचे आते हैं, नीचे से भी यहां आ जाते हैं। और कई धर्मों में जैसे पुनर्जन्म का नहीं बताया, लेकिन क्रिश्चियनिटी में पता चलता थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज समझाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, तो जैसे भगवान बुद्ध भी आए तो उन्होंने देखा रहे सब लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पशुवध कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, यज्ञों में आहुतियां दे रहे हैं और खा रहे हैं। वो कह रहे जी वेद में लिखा है इसलिए हम आहुतियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा मत मानो वेद को, भगवान स्वयं कर वेदों को मत मानो, क्योंकि उस समय हिंसा हो रही थी। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही क्या है, टॉप मोस्ट रिलीजन है। बट ये तो भक्त की क्वालिटी है, ये टॉप मोस्ट कैसे हो सकती। लेकिन उस समय जरूरत किस चीज की थी, उनको अहिंसात्मक बनाना ताकि वध ना हो। उन्होंने कहा जी वेद कहते वेद भूल जाओ, सब जीरो है, खत्म। तो ऐसी शिक्षा देकर चले गए। तो इस प्रकार भगवान का हर एक अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिर मध्यम तिष्ठन्ति राजा और तामसिक वृत्ति के लोग नीचे, और पूरे दिन में हमने बताया ये सब हमारे अंदर। हाँ, तो जो ऊपर जाते हैं उनको भी नीचे आना पड़ता है, इस तरह का हमारे साथ चलता है सारा। और फिर काल जो हम बता रहे थे, ये था प्रकृति का, हम लोग नेचर का बताया। और काल जो है समय, वो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वो सिक्स चेंजेस आते हैं। बर्थ, फिर बढ़ना शरीर का, ये काल समय की वजह से हो रहा है। फिर कुछ समय तक रुकना, फिर कुछ संतान उत्पन्न प्रोडक्शन, फिर उसका ढलना और फिर मृत्यु। तो काल हमारा को इस प्रकार क्षीण कर रहा है। गुड मॉर्निंग बोलते हैं रोज, नई सुबह तुम्हारे जीवन में ये लाए। शास्त्र कह रहे हैं कि सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से रोज हमारा एक दिन जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? आयु हरति वे पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्यसो। सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से रोज एक दिन कम हो रहा है। तो हमारे जीवन में जितना हमने जीना उसके 24 घंटे रोज कम हो रहे हैं। और हम बर्थडे मनाते हैं 365 कम होने पर, खुशियां मनाते हैं कि नहीं, कि आप जो हमारे साथ इतने समय थे जितना आपने रहना है उतना और कम हो गया, जल्दी जाओ। खुशी होती है कि नहीं? और जब वो चला जाता तो रोते हम, हाय चला गया। अरे भी रोज तो हर साल तो बर्थडे मना रहे थे हम, अब अचानक क्या हो गया? अज्ञानता। बर्थडे वो लोग मनाते हैं जो भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, ये वो दिन है जिस दिन मैं जन्मा, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, इस मनुष्य जीवन का को सार्थक कर सकूं। और सार्थक कैसी होगी, जब मैं आपकी भक्ति करूंगा, जब मैं माता पिता को भक्त बनाऊंगा और उनकी प्रसन्नता के लिए काम करूंगा। मैं जब आपका भक्त बनूंगा तो प्रहलाद महाराज को जैसे भगवान नरसिंह ने कहा कि तुम्हारे जैसा अगर भक्त एक परिवार में हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती, मतलब कोई कुत्ता बिल्ली गधा कबूतर मनुष्य देवता बना होगा तो वो भी वहां से तर कर कहां चले जाएंगे, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठों में। हम किसी के भी मरने भी लिख देते हैं स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, और लिखना ही पड़ता है, क्या करें, नरकीय तो लिख नहीं सकते बेशक, और स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, बट लिखना पड़ता है। भाई कौन लिखेगा भी नरकीय, स्वर्गीय लिखना पड़ता है। और ये स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये ऊपर का प्लेनेट स्वर्ग, फिर वापिस आना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता कहती है शुचिनाम श्रीमताम गे, जो अच्छे परिवार में अच्छे पुण्य करके भक्ति कर कर गए तो अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं, तो उसके हिसाब से उनको सारी चीजें प्राप्त होती है। तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता है, प्रकृति के द्वारा दिए गए जो फोर्सेस हैं तमोगुण रजोगुण सतोगुण, हमसे वो चीज करवाती है, उस जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म है उन तक पहुंचाती है, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो। हमें अचानक पता नहीं चलता कि अचानक किसी ने कुछ बोल दिया, अचानक डांट दिया, अचानक लड़ाई हो गई, अचानक ये मुंह तंग कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमने कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में किसी के साथ कुछ गलत किया है। हम लोगों को दोष देते, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, मेरी बहू ने ऐसा बोल दिया, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, ये पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, रिलेटिव ने ऐसा बोल दिया। ये तब हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पूरी फिल्म नहीं देखी ना, हमने तो हम देखे छोटा सा बच्चा, अरे छोटा सा बच्चा 3 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई, भगवान बड़ा निर्दयी है। ये कपड़े चेंज होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो जो 3 साल का बच्चा जिस तरह से गया है, उससे पिछले फाइल देखी आपने उठा के उसकी लाइफ की? हो सकता है वो बहुत कुछ गलत काम कर कर आया हो, है कि नहीं? हमें नहीं पता। जैसे किसी को बोलो जी फिल्म देखने चलना, 3 बजे आ जाना, ठीक मैं हॉल में मिलूंगा, ठीक। वो पहुंचा 5 बजे। कौन सी फिल्म है? बहुत मजेदार फिल्म है, बहुत कॉमेडी है उसमें, बहुत हंसी मजा आएगा। और वो आखिरी सीन पे पहुंचा जब फाइटिंग चल रही थी, उसने बोला तुम तो मुझे बोल रहे थे कि बड़ी कॉमेडी फिल्म है, इसमें तो फाइटिंग फाइटिंग हो रही है। कहते हैं आप आए लेट हो, मैंने पूरी देख ली है, उसमें थी कॉमेडी, ये तो लास्ट का सीन था। तो हमें मालूम नहीं पीछे क्या हुआ है। उसी तरह हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटेंगी, ये पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारे साथ आ रही है। हमने बताया जो शरीर का त्याग करते हैं तो मन बुद्धि अहंकार का शरीर में जो हमारे शरीर के द्वारा किए गए कर्म हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके रियलाइजेशन हैं, और उसमें जो डिजायर्स हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स जो रह गई, जो पूरी नहीं कर पाए, वो सारी की सारी इच्छाएं मन में जुड़ी हुई हैं, और वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को लेकर उस किसी और शरीर में जाएगा उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। खाली ड्रेस चेंज होगा, इच्छाएं सारी पूरी होंगी। भोग की इच्छा है नहीं ना, तो भोग तो कुत्ते के शरीर में पूरा हो रहा है, सांप के शरीर में पूरा हो रहा है, पक्षी के शरीर में भी हो रहा है। तो बस ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज है। आप गए, आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, आपने भर दिया, तो जब लॉटरी का टिकट लग, हो सकता है आपने उस दिन वो कपड़े ना पहने, दूसरे कपड़े पहने, तो मिल गई लॉटरी, है ना। तो उसी तरह हम लोग सोचते हैं बस अभी मिल जाए। कहते मुझे उन्हें अच्छा क्या, अच्छा क्यों नहीं मिला? तो कर्म का फल कई बार अलग अलग तरह से होता है। कई तरह के वृक्ष हैं, कुछ ऐसे वृक्ष हैं बहुत जल्दी बड़े होते हैं, जल्दी फल देने लगते हैं, जल्दी फूल देने लगते हैं, कुछ क्यों टाइम लगता है, 10 साल 20 साल। उसी तरह जो हमारे कर्म हैं, इन कर्मों का गति इतनी गहन है, भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। किस कर्म का, किस चीज का कब रिएक्शन है, कब मिलेगा फल, ये हम नहीं डिसाइड करते। भगवान कहते हैं इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना कर्म करो, उसके फल पर आसक्त मत हो, वो मैं दूंगा कब देना। कर्मों को वैसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान बदल सकते हैं किसी के भी कर्म। इतना बड़ा फल भी छोटा करके आता है। जैसे नानक देव जी 2 लोगों के साथ जा रहे थे, एक को सोना मिला, ठोकर लगी, तो जो भक्त था उसको कांटा चुभा, जो ठीक नहीं था, इतना ज्यादा डिवोटेड नहीं था, उसको एक सोने की अशर्फी मिल गई। कहता देखा, मैं भक्ति नहीं करता तो भी मुझे सोने की अशर्फी मिली है, और तू थोड़ी बहुत भक्ति करता है, देख तेरे को ठोकर मिली है। तो दोनों परेशान तो हुए, वो बेचारा परेशान हुआ और पूछा नानक देव जी से, उन्होंने बोला मैं देखता हूँ, पीछे चलो मैं देखा, तो बताया भाई जिसको अशर्फी मिली है इतने अच्छे से काम किए थे, लेकिन ये भक्ति नहीं करता, इसके कर्म उल्टे हैं, तो इस बार ठोकर लग के उसको जहाँ घड़ा मिलना था उधर भाई एक अशर्फी से काम चलाना पड़ा, और तुम जो हो तुमने पूरे पिछले जन्म में बड़े बुरे उल्टे सीधे काम किए थे, और आज शूल चुपके ठोकर लग के नहीं, शूल चुपके तुम्हारी मृत्यु होनी थी, या तुम्हारा साथ बहुत बड़ा बीमारी लगनी थी, लेकिन तुम्हारे भक्ति ने तुम्हारे सारे कर्म को क्या कर दिया, क्षीण कर दिया, और ये केवल हल्के से ठोकर के रूप में लगा है ना। लेकिन हमको तो नहीं दिखाई देता, हमें तो लगता है ठोकर भी क्यों लगी, मैं तो भक्ति करती हूँ, मुझे तो बस भगवान को गोदी में उठा के झूले झुलाने चाहिए बस, है ना, मेरे से तो अच्छा कोई नहीं है। अच्छी की डिग्री हमने अपने आप को दे रखी है। एक शराबी कहता है मैं सबसे अच्छा हूं, मैं पीता हूं और पिलाता भी हूं, ये अच्छा काम है, ये उसके हिसाब से अच्छा काम है। IAS वाले बड़े हैं, गन लेके खड़े हैं हाथ में कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है, ठा ठा ठा, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, बॉस मुझे बख्शीश दो, बट तुम्हारा निशाना मारना दूसरे के लिए गलत है। तो हर एक्शन का, हर उसका एक फल मिलता है, लेकिन ये फल भगवान के हिसाब से मिलता है। और हमने जो अपने को डिग्री देख रही है कि मैं अच्छा हूं, या एक बुरा व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है उसके साथ तो अच्छा हो ही जा रहा है, तो ये अपनी पुरानी खेती खा रहा है, पुराना अनाज खा रहा है, इसका ये खत्म होता ही उसका बैंड बजने वाला है, समझ रहे। तो हमें इस तरह बुरे लोगों को देखकर इंस्पायर नहीं होना बुरे कामों के लिए, छोड़ो अच्छे काम, बुरे ही कर लो, है ना, देखेंगे क्या होगा, इनको भी वहीं मिलेंगे, हम भी वहीं मिलेंगे, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार हम लोग इन कर्मों की तरफ जुड़ जाते हैं, और फिर जो काल है, ये काल अपना काम पूरा कर रहा है, ये बढ़ रहा है और हमारे को क्षीण कर रहा है। और फिर कोई भी कर्म करने के लिए पांच फैक्टर भगवत गीता कहती है 18वें अध्याय का 14वां श्लोक कि पांच फैक्टर चाहिए किसी भी कर्म करने के लिए, कोई भी एक्ट करने के लिए। एक है शरीर के अंदर सुपर सोल परमात्मा, कोई भी शरीर कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं जिसके अंदर परमात्मा ना हो, परमात्मा हर एक के साथ हमेशा रहते हैं। क्यों? साक्षी के रूप में कि आपने क्या किया, आपकी क्या डिजायर थी वो नोट करते हैं, कब किया, कर्म किया, किसी ने नहीं देखा सर, सीसीटीवी भी नहीं लगे थे, दरवाजे भी बंद थे, हमने तब किया, या हमने किसी को कुछ बोला हम मुकर गए, कोई नहीं था, क्या कर लोगे मेरा। तो परमात्मा क्या करते हैं, सब नोट करते हैं। इसके अलावा दसों दिशाएं, देवतागण, सन एंड मून, ये सब हमारे क्या हैं, गवाह हैं, साक्षी हैं। तो जब कर्म करके जाते हैं ना यहां से, जब लेके जाया जाता है यमराज के सामने, जब खड़ा किया जाता है, वो बोलता मैंने कुछ नहीं किया, तो वहां पर LCD लगा होता है और उस पर रिमोट से उसका नाम डालते दिखाते, ये देख, और फिर जो नरक बताए हैं, कुंभी पाक नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र, वहां पर उसको यातना शरीर देते हैं, क्योंकि शरीर तो आपको यहां जल गया, फिर दूसरा शरीर मिलता है यातना शरीर, उसमें खाली दर्द पूरी होती है, वो मरता नहीं है, पहाड़ों से फेंकेंगे, फ्राई करेंगे, सब कुछ कर, डराऊंगा तो डराऊंगा, अरे नहीं लिखा है भैया, मैं बताऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना, इस्लाम में भी लिखा है, क्रिश्चियनिटी में, हर जगह लिखा है। तो परमात्मा हर एक के हृदय में, उनका काम बता दिया, सन से भी छुप जाओगे, मून से भी छुप जाओगे, किसी की डिस्क्रिप्शन में, लेकिन परमात्मा तो सारी लिस्ट लेके बैठे हैं। और प्लेस ऑफ एक्शन, ये शरीर मिलता है, आत्मा कर्ता तीसरा फैक्टर वो है, चौथा है सेंसेस, और पांचवा है हमारी चेष्टाएं, एंडेवर, जो प्रयास हम करते हैं। तो ये पांच चीजें होती हैं तब कर्म होता है, भगवान का सैंक्शन भी चाहिए अंदर से, मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब करूंगा, अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा, नहीं मिलनी चीज, वो मेरे प्रारब्ध में है ही नहीं, तो नहीं होगी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं हृदय में बैठकर क्या करता हूं, लोगों को स्मृति देता हूं, याद करने की शक्ति, याद कर, तू ये कर सक, अचानक ही तो होता है सब कुछ, आप जो आइडियाज लेते हो या देते हो या कुछ करने की कोशिश करते हो, वो कैसे होता है, परमात्मा हृदय से एकदम ये कर ले, वो सही टाइम पे मैंने कर दिया, मेरा दिमाग देखो प्रभु जी कमाल, मैं अगर सही टाइम पे डिसीजन ना लेता ना तो होता नहीं। तो आई एम द डूअर, आई एम द बेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट, और कई जगहों पर आपको याद ही नहीं आया, कुछ अरे यार पता नहीं क्या, ओहो निकल गया, फिर रहता है पछताते हैं, ओहो यार उस समय ये भी कर सकता था, क्यों नहीं याद आया, समझ नहीं आया, नहीं देना था, नहीं होना था। तो परमात्मा स्मृति नहीं देते, उस समय ज्ञान नहीं देते, विस्मृति दे देते हैं, कह रहे ना स्मृति ज्ञान अपोहनम, अपोहनम मीन्स फॉरगेटफुलनेस, भुला देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो भगवान का ये काम अंदर, ऐसे नहीं बैठे खाली, कोई काम ही नहीं उनके पास, और सारे चीजें नोट कर रहे हैं। एक्चुअली बड़ा मुश्किल है, एक तरफ तो हमारी मेंटालिटी है एंजॉयमेंट की, ऊपर से ये सब सुनना बड़ा डर लगता है, अरे भैया एंजॉय भी करना है, पाप भी करने हो ही रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, हम भी थोड़ा कर लें, तो बड़ा मुश्किल है, तो सुन लिया हमने, तो परमात्मा देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, प्रभु जी ने तो डरा दिया आज, फिर क्या करें, गड़बड़ हो गई, तो नोट भी हो रही है सारी, देख भी रहे, और होती है गलतियां, किससे नहीं होती, ये तो पापों की जगह है सारी, शरीर मिला है इसका मतलब पाप करे थे, ये पुण्य करे थे। तो जब हम कर्म करते हैं इन पांच फैक्टर के द्वारा और सक्सेस मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं गीता में, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वशः अहंकारम विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कहते हैं जो मूर्ख आत्मा है, जो ये व्यक्ति जो है, ये अपने आप को कर्ता मान बैठता है कि मैं कर रहा हूं, ये इन फाइव फैक्टर्स को भूल जाता है, और अपने को कर्ता मानता है और इसलिए ये विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मान लेते अपने को कर्ता कर्मों का कर्म कहते ये सब प्रकृति के द्वारा प्रकृति क्रियमाणानी गुणा कर्म गुणों के हिसाब से हो रहा है। प्रकृति के गुण तीन सत्वगुण तमोगुण रजोगुण उसके थ्रू कराया जा रहा है। फिर कोई बोल सकता है हम अच्छा भी करें तो फिर भगवान कर रहे हैं इसका मतलब है और बुरा करें तो भी भगवान ही करा रहे हैं। फिर अब भगवान बुलाएंगे तो मंदिर आएंगे तो जी भक्ति नहीं कर सकते माला वाला हमसे नहीं होती। भगवान जिस दिन कराएंगे उसी दिन होगा सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। फिर रोटी खिलाएंगे तो भगवान खिलाएंगे नहीं तो मैं चबाऊंगा नहीं कुछ भी नहीं करूंगा नहीं। तब तो एफर्ट कर रहे हैं हैंड ओवर कर रहे हैं। फिल्म लगती है अमिताभ बच्चन की तो अमिताभ बच्चन टिकट देता है आपको आ जाओ फिल्म देखने एक मैसेज भेजता है आपको अमिताभ बुलाएगा नहीं तब तो ऐसा नहीं करेगा। हाँ तो एंडेवर करना पड़ता है और कर्म करना पड़ता है ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो करते ही हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बार बार करने से नहीं होते। जब हमें ज्ञान मिल जाता है भगवत गीता का ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान तो हमें डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या सही है क्या गलत है और करना क्या है उसका ज्ञान हो जाता है और हम लोग उस प्रकार भगवान के द्वारा मिले सैंक्शन के साथ वो काम करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बल वालों का बल मैं हूं। भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो हर चीज बता रहे हैं भगवान की सब कुछ मैं हूं सारी विभूतियां मेरे द्वारा है लेकिन जो अधर्म है वो मैं नहीं हूं। अधर्म आपकी फ्री विल के अकॉर्डिंगली आप उसके प्रति एंडेवर कर रहे तो वो आपका है। समझ रहे मुश्किल लग रहा है ना तो भगवान ने कहा तुम्हारा ही है भैया मेरा नहीं। आपके पास चॉइस है कि मैं सही का साथ दूं या गलत का। आपके पास सही करने का सही गलत करने का अपॉर्चुनिटी है आपके पास वो है। तो अगर आप ज्ञान में हैं शक्ति है आपके पास तो आप सैंक्शन मिलेगा आपने कर दिया। चोर अगर मेडिटेट कर रहा है मुझे ये करना है चोरी करनी है करनी है परमात्मा कह रहे भाई करेगा तो जेल जाना पड़ेगा मार पड़ सकती है बट मुझे करना है ओके कर ले। समझ रहे तो जिस चीज के प्रति हम बहुत ज्यादा एंडेवर करते हैं कई बार परमात्मा कहते हैं कर फ्री विल है तेरे पास। कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं जैसे 3 साल में 7 साल में 9 साल में 12 साल में 13 साल में 18 साल में ये पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलना है या नहीं मिलना बट इन कर्मों के बीच का जो टाइम है ये हमारी फ्री विल है। ये और कर्म जनरेट करने के लिए हमारे पास टाइम है लेकिन अज्ञानतावश हम उस कर्म को उस टाइम को भी किस में लगाते हैं उन्हीं कर्मों में जोन से। तीन तरह के कर्म हैं। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन से कर्म पूजा है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं एक है सकाम कर्म एक है विकर्म और एक है अकर्म। ये तीन प्रकार के कर्म हैं। अब कौन से कर्म पूजा है वो समझना है। सकाम कर्म मतलब कामनाओं के सहित मैं ये कर रहा हूं मुझे ये मिलना चाहिए या ये करूंगा तो ये मिलना ही चाहिए तो इसमें किसका एंजॉयमेंट है किसका फायदा है अपना अपने फायदे के लिए तो ये कर रहे हैं। और हमारी परवरिश इस तरह के माहौल में हुई है कि कर्म के पीछे फल ढूंढो। हमारा पूरा एटमोसफियर ऐसा है हर व्यक्ति कर्म कर रहा है फल की इच्छा से तो हम भी ट्रेंड हुए तो यही करने के लिए। दूसरा है विकर्म। अब कर्म कर लिए अपने फायदे के लिए कर लिए चलो ठीक है विकर्म भी अपने फायदे के लिए करते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं शास्त्रों के विपरीत होते हैं। जो शास्त्र कह रहे हैं ये नहीं करना आप वही कर रहे हो ये करना है वो नहीं कर रहे हो क्योंकि मन का वेग बहुत तेज है ज्ञान है नहीं तो हमने वो कर्म कर दिए जो नहीं करने चाहिए। तीसरे हैं अकर्म। ये वो कर्म है जो बच्चा आत्माएं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये हमने बोल रहे हैं 9वें अध्याय में कह रहे हैं यद करोषि यद अदनाशी यद जुहोषि ददासी यद यद तपस्यासि कौन्तेया तद कुरुषव मदर्पणम्। तो जो तुम खाते हो, जो पीते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान करते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। हम अभी जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने मजे के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, उनके फलों को भोगना चाहते हैं। जब फलों के भोगने की प्रयास करते हैं तो कुछ अच्छे कर्म होते हैं और कुछ बुरे कर्म होते हैं। फिर जब शरीर छड़ा छूट जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, तो फिर उन अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे से बुरा क्यों हो रहा है, या हमारे से अच्छे के साथ बुरा क्यों हो रहा है, बुरे के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो क्या करना है हमको? भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 47 वर्ष में भगवान ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। हमारे ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे दुखी कर्मों के फलों की आसक्ति के कारण है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है। हम डिसाइड कर चुके हमें मिलेगा, लेकिन क्या होता है, भगवान करते हैं सैंक्शन, कईयों को नहीं करते। भगवान ने कहा कि माँ फलेश, फल मैं देने वाला मैं हूं बाबा, और आप क्या सोचो मैंने ये कर दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इतना तो मिलना ही चाहिए। इसके साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, इसको हमेशा मेरे साथ अच्छे व्यवहार करना ही चाहिए। मैंने इसके साथ हमेशा अच्छा किया, इसको भी मेरे साथ अच्छा कर। हर कर्म हर विचार के साथ आ सकते हैं। मैं रोज एक्सरसाइज करने जाती हूं, योगा करता हूं, भागता हूं, दौड़, मेरा शरीर अच्छा रहना ही चाहिए। मैंने एक महीना काम कर लिया, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। तो क्या है ये सब? सारे फल हैं कि नहीं? मैं पार्क जा रहे हैं, बरसात नहीं होनी चाहिए, होगी। खाना खिलाया किसी ने, मीठा तो आएगा ही आएगा, नहीं दिया, मतलब समझ पा रही बात को। बच्चों को बोला ये करो होमवर्क, नहीं किया। हर चीज से आ सकता, देखो मेड आएगी सारे काम वो करेगी, नहीं आई, खुद करने पड़ रहे हैं। आ सकते कि नहीं? विचार से भी आ सकते, ये होगा फिर वो ये कर देगी, फिर मैं आराम से बैठूंगी, हो गया काम। मैं घर आऊंगा तो आज वही दाल बनाई होगी जो मुझे पसंद है, नहीं बनाई सब्जी बना दी। आ सकते कि नहीं थे विचार से? तो हमारी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक हुई हुई है, जो हमें जिसकी वजह से हर जगह दुख और तकलीफ ही सहनी पड़ती है। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, भैया कर्म करो, कल का कर्म का फल मैं दूंगा, मैं बताऊंगा देना नहीं देना, नहीं लिखा तुम्हारे कर्म, नहीं दूंगा, देना होगा दे दूंगा। और अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपने रिलेशन को, अपने उन सब चीजों को इस समय याद करो दो मिनट के लिए, और आप देखोगे कि आपकी अटैचमेंट के कारण कि आप चाहते थे ऐसा हो वैसा नहीं हुआ, इसलिए आपका संबंध उनसे ठीक नहीं है, या आपका वो। आप याद करो, मुझे बताओ ये मैं भगवान ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सोचिए, जल्दी सोचिए, कितने लोगों को लगता भगवान ठीक कह रहे हैं? हाथ खड़ा करो। बेटा हमारा कहना नहीं मानता, हमने पाला बड़ा ये मानते नहीं हमारे कहना। किससे आ सकते हो? इस बात से कि वो कहना माने। बहू को मैंने बोला ये बना दे, नहीं बना। किससे आ सकते है? कि मेरा हुक्म माना जाए। ऑफिस गया तो ये काम होने चाहिए थे, तो आप कहोगे पूजी फिर तो कुछ करे ही ना, मतलब आ सकती है, मतलब काम ही नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा आदमी, तो लगता कि नहीं? समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने कहा है कर्म तो करना है, खाली तो कोई नहीं बैठ सकता, एक क्षण भी खाली नहीं बैठा जा सकता। कर्म करना है निष्काम, मतलब उस पर कामना नहीं रखनी, पूरे एनर्जी के साथ। अर्जुन ने क्या किया? कंफ्यूज था वो भी, भगवान ने उसको पहले ही दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको मारना सब मर गया, देख मेरे मुंह में जाके सबको मार चुका हूं। तो अर्जुन ने कहा वाह कमाल हो गया। तो अब अर्जुन ने कहा चलो जी मैं तो चलूं मैच देख लेता हूं। नहीं, अर्जुन ने तीर धनुष उठाया और पूरे उत्साह के साथ अपना क्या किया, क्षत्रिय का कर्म क्या है, युद्ध करना, पूरा युद्ध किया जी, रोज के सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक दोनों हाथों से तीर छोड़ता था पूरे उत्साह के साथ। मालूम भी एंड रिजल्ट क्या है, बट फिर भी खाली नहीं बैठा। तो इसका मतलब क्या है, कर्म हमें करने हैं, कर्तव्य हमें करने हैं, शास्त्र सम्मत करना है, लेकिन उसमें फल की इच्छा, अगर ये गुण आपके अंदर आ गया तो कल से आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे, आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से। ठीक है, मैंने बोला है कि ये कर दो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर बोल देंगे, एक बारी और बोल देंगे, पर अनासक्त हो गए, भाई कर दो जरूरी है, फिर नहीं किया, ओके शायद नहीं होना, बहुत बहुत जरूरी काम है, अब ये थोड़ी कि मैं ये बोलूं नहीं होना था तो छोड़ ही दूं, एक बारी और बोल लेते हैं, दो बारी और बोल लेते हैं, खुद कर लेते हैं, हो गया भाई, क्या दिक्कत है। इसी तरह रिलेशंस में, इसी तरह घर में, इसी तरह ऑफिस में यही होना चाहिए, क्या कि हम जो भी कर्म करें, कहीं ना कहीं दिमाग में टेंडेंसी और प्रवृत्ति ऐसी है कि फल तो आ ही जाता है कि करना ही है, ये मिलना ही है, क्योंकि अब ट्रेनिंग ऐसी है तो क्या करो, कोई बात नहीं, अगर कर भी लिया ऐसा तो फिर अनासक्त रहो, याद करो उसी टाइम, जैसे गुस्सा, लड़ाई भी इसलिए होती, गुस्सा भी इसलिए आता है कि हमने जो बोला वो हुआ नहीं। तो इस प्रकार हम लोग नया कर्म जनरेट नहीं करेंगे, अगर हमारी किस्मत में लिखा नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, कोई डिजीज है डॉक्टर के पास, वही डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अब दवाई खा के क्यों नहीं हो रहा, हमेशा तो होता था, डॉक्टर चेंज तुम करो, वो भी नहीं कर पा रहा, तो समझ जाओ कि पूरे पिछले जन्म का कुछ ऐसा प्रारब्ध था जो लंबे समय तक शायद बीमारी है तो होना ही है। तो क्या करें, अपने प्रयास करते रहो लेकिन अनासक्त भाव से, डॉक्टर चेंज कर लो नो प्रॉब्लम, उधर चले जाओ, इधर चलो, हो जिस दिन होना होगा तो हो जाएगा, और पता चले बिना दवाई के हो गया। तो कर्मणा गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। भीष्म पितामह देख रहे थे भाई इतने सारे तीर लगे हुए, क्यों कैसे क्या कर दिया मैंने, पिछले जन्म को सोच रहे थे, एक दो तीन चार, भगवान ने कहा एक और देख लो, कहीं पर आपने रथ को आते हुए देखा, सांप को बचाने के लिए झाड़ियों फेंक दिया, बेचारा कांटों में फंस गया, तरह तरह तड़पता रहा, तो वही फल आपको मिला। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे 100 पुत्र मारे गए, उनके पांचों के पांचों बच गए, उसने भी कोशिश करी, भगवान ने कहा तुम्हारे लिए तुमने ऐसा ऐसा किया था पिछले जन्म में, वध किया था ऐसे ऐसे, तो तुम्हारे पास इतने पुण्य नहीं थे कि तुम्हारे 100 पुत्र हो, तो पहले कई जन्मों तक 100 पुण्य करने पड़े, इतने पुण्य करे तब 100 पुत्र पैदा हुए, तब उनको इकट्ठा मारना पड़ा। गहना कर्म गति बहुत गहन है, तो क्या करें, मतलब हम तो बड़ा कुछ करते हैं, कोई मच्छर तो यूं मारते हैं जब कुछ है ही नहीं, कुछ कुछ भी बोल दिया, नया कर्म जनरेट कर दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को उद्वेग दे दिया है ना, चिढ़ाओ इसको, पंगे ले लो उससे, क्यों करें, जबरदस्ती जानबूझ के किसी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, जानबूझ के हमने टेढ़ी गाड़ी खड़ी कर दी, देखता हूँ क्या कर लेगा, जानबूझ के नमक ज्यादा डाल दी इसको बना रहे, अपने मेरे थोड़ी है। तो ये सारे लिखे जा रहे हैं, फिर जब हमारे साथ होंगे हम कहेंगे ऐसा क्यों कर दिया, फिर हम गुस्सा होंगे, क्रोध करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो जब बोलेंगे कुछ करेंगे तो वो एक कर्म और जनरेट हो गया। एक बार मैं वॉशरूम में था तो कबूतर बैठा था, तो मैंने पानी लिया, ठाक रही फेंका, डर गया और उड़ गया भाग के, और मैंने कहा ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये एक नया कर्म जनरेट कर दिया। मैंने कहा अब कोई ना कोई मुझे भी डराएगा, कुछ ना कुछ करेगा, कभी ऐसे सिचुएशन आएगी जब मेरे मन को भी इतना डर लगे, वो कैसे भी आता, कबूतर नहीं करेगा, कोई और कर सकता है। तो अगर हमारे साथ दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो किसकी वजह से आ रही हो, हम दोष किसको देते हैं, भगवान को और दूसरों को, गलती किसकी है, हमारी, हमारे पूर्वजों की। तो जब हमारे को कोई कष्ट देता है, दुख देता है, तो हमें उसका, उसे द्वेष करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, भाई ये कर्म उतार दिया हमारा उसने, हम क्या करते हैं, ईर्ष्या द्वेष प्लानिंग, उसके साथ ये करूंगी, वो कर दूंगा, फिर ऐसे हो जाएगा, इसको भी साथ में, पूरा भजन खराब, पूरा भोजन खराब, पूरा जिंदगी खराब, इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं, इस देश ने ये बोल दिया, उस पॉलिटिशियन ने ये बोल दिया, हम ये बोलेंगे, ये करेंगे, पहले कमी है अपने अंदर लड़ने की, और दुनिया का गंद भी इकट्ठा कर रखा है। तो सतोगुणी व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है, ये सब चीज करता है, उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है, ज्ञान आ जाता है, उसको मालूम है कब क्या करना है, किस दृष्टि से देखना है, कर्म कैसे होते हैं, कैसे अपने को बचाना है, किस प्रकार अकर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि सतोगुण भी बांधता है, स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं अकर्म की। अकर्म का मतलब हर चीज किसके लिए करनी है? भगवान की प्रसन्नता के। अब भगवान की प्रसन्नता तो तब जानेंगे या कोई हमें समझाने वाला हो जो हमने भगवद गीता पढ़ी कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। अब हमें ये नहीं मालूम कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? हमने तो जो स्कूल में पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, हम उसके आधार पर सारे काम कर रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है क्या कि अकर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। कल हम ये बताएंगे कि योगा है ना, योग क्या है और उसको कैसे समझना है। ठीक है, समय हो चुका है, 2 मिनट की आरती करेंगे, जल्दी जल्दी आके कर लीजिए। हो सकता है कहीं के प्रश्न हो तो फिर आप कल ही पूछना, आपको टाइम नहीं, मुझे भी जल्दी जाना, मैंने समय नहीं देखा। क्या जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी।